अध्याय 21, एक महान खाड़ी को स्थिर करना। ये अध्याय लूका 16 आयत 19 से 31 पर आधारित है। अमीर आदमी और लाजर के दृष्टांत में मसीह दिखाते हैं कि इस जीवन में पुरुष अपने अनंत भाग्य का फैसला करता है। परिवीक्षाधीन समय के दौरान ईश्वर की कृपा हर आत्मा को प्रदान की जाती है, लेकिन अगर पुरुष स्वयं सुख में अपने अवसरों को बर्बाद करते हैं तो वे खुद को सदाबहार चमक काट लेते हैं। परिवीक्षा के बाद उन्हें कोई अनुमति नहीं दी जाएगी। अपनी पसंद से उन्होंने अपने और अपने ईश्वर के बीच एक अमोघ खाई तय की है। ये दृष्टांत उन अमीरों के बीच एक विरोधाभास बनाता है जिन्होंने ईश्वर को अपनी निर्भरता नहीं बनाया है। मसीह दिखाता है कि समय आ रहा है जब दो वर्गों की स्थिति को उलट दिया जाएगा। जो लोग इस दुनिया के सामनों में गरीब है, फिर भी जो ईश्वर पर भरोसा रखते हैं, दुख में धैर्य रखते हैं, एक दिन उन लोगों से ऊपर हो जाएगा जो दुनिया के सबसे बड़े पद को दे सकते हैं, लेकिन जिन्होंने ईश्वर के सामने अपना जीवन समर्पण कर दिया। एक निश्चित अमीर आदमी था, मसीह ने कहा, जो बैंगनी और महीन लिनन के कपड़े पहने हुए था और हर दिन जमकर खाता था, और निश्चित भिखारी का नाम लाजर था जो उसके दरवाजे पर रहता था। वो घावों से भरा हुआ था और उजाड़ हो गया था। अमीर आदमी की मेज से गिरे टुकड़ों से अपना पेट भरता था। अमीर उस अन्यायी जज का प्रतिनिधित्व करने वाले वर्ग के नहीं थे जिन्होंने खुले तौर पर ईश्वर और मनुष्य के लिए अपनी अवहेलना की घोषणा की थी। उसने इब्राहिम का पुत्र होने का दावा किया। उन्होंने भिखारी के साथ हिंसा का व्यवहार नहीं किया था। उसे दूर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी क्योंकि उसकी दृष्टि असहनीय थी। यदि मानवता के गरीब घृणित नमूने को उसके द्वार में प्रवेश करने से दिलासा दिया जा सकता है, क्योंकि वह अमीर आदमी तैयार था कि, लेकिन वो अपने पीड़ित भाई की जरूरतों के लिए स्वार्थी था। तब कोई अस्पताल नहीं था जिसमें बीमारों की देखभाल की जा सके। दुख और जरूरतमंदों को उन लोगों के ध्यान में लाया गया जिनके लिए ईश्वर ने धन सौंपा था कि वे सहायता और सहानुभूति प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार ये भिखारी और अमीर आदमी के साथ था। लाजर को मदद की बहुत जरूरत थी क्योंकि वो मित्र, घर, धन या भोजन के बिना था। फिर भी उन्हें दिन इस स्थिति में बने रहने दिया गया जबकि धनी महान व्यक्ति के पास आपूर्ति की इच्छा थी। जो बहुतायत से अपने साथी प्राणी के दुखों को दूर करने में सक्षम था, वो आज जितने जीते हैं उतने ही जीवित रहते हैं। आज हमारे पास कई ऐसे हैं जो भूखे, नग्न और बेघर हैं। इन जरूरतमंदों के लिए हमारे साधनों को लागू करने की उपेक्षा पीड़ित हमारे ऊपर अपराध का बोझ डालती है, जिसे पूरा करने के लिए हम एक दिन सभी लोग की मूर्ति पूजा के रूप में निंदा की जाती है। सभी स्वार्थी लोग ईश्वर की दृष्टि में एक अपराध में हैं। ईश्वर ने अमीर आदमी को अपना साधन बना लिया था और उसका कर्तव्य था कि भिखारी के रूप में सिर्फ ऐसे मामलों में भाग ले। आज्ञा दी गई थी, तूने अपने परमेश्वर यहोवा से पूरे प्रेम से और अपनी सारी आत्मा के साथ और अपनी सारी शक्ति के साथ प्रेम कर। व्यवस्था विवरण 6:5। और तू अपने पड़ोसी से अपने जैसा प्रेम कर। ले व्यवस्था विवरण 19:18। अमीर आदमी एक यहूदी था और वह ईश्वर की आज्ञा से परिचित था, लेकिन वह भूल गया कि वह अपने सौंपे साधनों और क्षमताओं के उपयोग के लिए जवाबदेह था। प्रभु का आशीर्वाद उस पर बहुतायत से विश्राम करता था, लेकिन उन्हें स्वार्थी रूप से नियुक्त करता था, खुद को सम्मानित करने के लिए और अपने निर्माता के लिए नहीं। उनकी बहुतायत के अनुपात में मानवता के उत्थान के लिए अपने उपहारों का उपयोग करना उनका दायित्व था। यह प्रभु की आज्ञा थी, लेकिन अमीर व्यक्ति ने ईश्वर के प्रति अपने दायित्व के बारे में नहीं सोचा था। उन्होंने पैसे उधार दिए और वापस लिए, जिस चीज के लिए उसने कर्ज लिया था, लेकिन उसने ईश्वर के लिए जो कुछ उधार दिया था उसके लिए उसने कोई दिलचस्पी नहीं ली। उसे एक प्रतिभा का ज्ञान था, लेकिन उसके सुध गार नहीं सका। ईश्वर के प्रति अपनी जवाबदेही को भूलकर उसने अपनी सारी शक्तियों को भोगने के लिए समर्पित किया। मनोरंजन का दौर, प्रशंसा और अपने दोस्तों की चापलूसी अपने स्वार्थ भोग के लिए किया। वो इतना तल्लीन था कि दोस्तों के समाज में कि उसने दया के अपनी सेवकाई के साथ सहयोग करने के लिए अपनी जिम्मेदारी के सभी अर्थ खो दिए। उसे परमेश्वर के वचन को समझने और उसकी शिक्षाओं का अभ्यास करने का अवसर मिला, लेकिन जिस सुख प्रेमी समाज को उसने चुना, उसने अपने समय पर इतना कब्जा कर लिया कि वह अनंत काल के ईश्वर को भूल गया। वह समय आया जब दो आदमियों की हालत में बदलाव आया। गरीब आदमी दिन पर दिन पीड़ित था, लेकिन धैर्यपूर्वक और चुपचाप उसने सहन किया। समय के साथ वह मर गया और उसे दफना दिया गया। उसके लिए विलाप करने वाला कोई नहीं है, लेकिन दुख ने अपने धैर्य से उसने मसीह के लिए देखा था। उसने अपने विश्वास की परीक्षा को समाप्त कर दिया था और मृत्यु के समय उसका प्रतिनिधित्व स्वर्गदूतों द्वारा अब्राहीम के शरीर में किए जाने के रूप में किया जाता है। लाजर मसीह पर विश्वास करने वाले पीड़ित गरीबों का प्रतिनिधित्व करता है। जब तुरही बजाती है और कब्र में रहने वाले सभी लोग यीशु की आवाज सुनते हैं, तो उन्हें उनका इनाम मिलेगा। ईश्वर में उनके विश्वास के लिए एकमात्र सिद्धांत नहीं था, लेकिन एक वास्तविकता थी। अमीर आदमी भी मर गया और उसे दफनाया गया, और नाटक में वह उसने अपनी आंखों को ऊपर उठाकर देखा और लाजर को उसकी गोद में देखा। उसने रोकर कहा, पिता अब्राहम, मुझे पर दया करो और लाजर को भेजो कि वह अपनी उंगली के किनारे को पानी में डुबाए और मेरी जीभ को ठंडा कर दे, क्योंकि मैं इस भाग में तड़प रहा हूं। इस दृष्टांत में मसीह अपने ही आधार पर लोगों से मिल रहे थे। मृत्यु और पुनरुत्थान के बीच अस्तित्व की एक सचेत स्थिति का सिद्धांत उन लोगों में से कई के पास था जो मसीह के शब्दों को सुन रहे थे। उद्धारकर्ता को उनके विचारों के बारे में पता था और उन्होंने दृष्टांत को तैयार किया ताकि इन पूर्ववर्ती राय के माध्यम से महत्वपूर्ण सच्चाइयों को उबारा जा सके। वह अपने श्रोताओं के सामने एक दर्पण रखता था जिसमें वे स्वयं को ईश्वर के प्रति अपने वास्तविक संबंध में देख सकते थे। उन्होंने प्रचलित राय का इस्तेमाल इस विचार को व्यक्त करने के लिए किया कि वह सभी को प्रमुख बनाना चाहते थे। कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति के लिए मूल्यवान नहीं है, क्योंकि वह केवल प्रभु द्वारा उधार लिए गए हैं। इन उपहारों को दुरुपयोग उसे सबसे गरीब और सबसे पीड़ित व्यक्ति के नीचे रखेगा। जो ईश्वर से प्यार करता है और उस पर भरोसा करता है,
मसीह अपने श्रोताओं को ये समझने की इच्छा रखता है कि मृत्यु के बाद आत्मा के उद्धार को सुरक्षित करना पुरुषों के लिए असंभव है। बेटे अब्राहम के जवाब देने के रूप में दर्शाया गया है, याद रखे कि आप अपने जीवन काल में आपकी अच्छी चीजों को प्राप्त करते हैं और इसी तरह बुरे कामों को करते हैं, लेकिन अब वह शांत है और आप कला में तड़प रहे हैं, और ये सब हमारे और आपके बीच है। गहरी खाई तय है ताकि वे जो आपसे पारित नहीं कर सकते हैं और ना ही वे हमारे पास से जा सकते हैं जो चोरी से आएंगे। इस प्रकार मसीह ने दूसरी परिवीक्षा की आशा की निराशा को दोहरा दिया। ये जीवन ही मनुष्य को दिया गया है जो अनंत काल के लिए तैयार है। अमीर आदमी ने इस विचार को नहीं छोड़ा था कि वह अब्राहम का बच्चा था और उसकी व्यथा में उसे सहायता के लिए पुकारने के रूप में दर्शाया गया है। अब्राहम, उन्होंने प्रार्थना की, मुझ पर दया करो। उसने ईश्वर से प्रार्थना नहीं की, लेकिन अब्राहम से। इस प्रकार उसने दिखाया कि उसने अब्राहम को ईश्वर से ऊपर देखा, और ये कि वह अब्राहम के उद्धार के अपने रिश्ते पर निर्भर था। क्रूस पर मौजूद चोर ने अपनी प्रार्थना मसीह को दी, मुझे याद करना जब तू अपने राज्य में आए, उसने कहा, लूका 23:42। और एक बार प्रतिक्रिया आई तो आज मैं आपसे कहता हूं, जैसा कि अपमान और पीड़ा में क्रूस पर हाथ करता हूं, आप मेरे साथ स्वर्ग में होगे। लेकिन अमीर आदमी ने इब्राहीम से प्रार्थना की और उसकी याचिका मंजूर नहीं की गई। अकेले मसीह को एक राजकुमार और उद्धारकर्ता होने के लिए कहा जाता है, प्रेरितों के काम 5:31। ना ही किसी और में मोक्ष है, प्रेरितों के काम 4:12। अमीर आदमी ने आत्मसुख में अपना जीवन बिताया था और देर से उसने देखा कि उसने अनंत काल के लिए कोई प्रावधान नहीं किया था। उसने अपने आप को महसूस किया और अपने भाइयों के बारे में सोचा
जो जीवन को खुश करने के लिए जी रहे थे। तब उसने निवेदन किया, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि पिता की कि आप उसे लाजर को मेरे पिता के पास भेज दें, क्योंकि वहां मेरे 5 भाई हैं। उससे कहा, उनके पास मूसा और भविष्यवक्ता है, उनके सुनने दो। और उसने कहा, पिता इब्राहिम, यदि कोई मरे हुओं में जाए तो वे विश्वास करेंगे और पश्चाताप करेंगे। और उन्होंने उससे कहा, यदि वे मूसा और भविष्यवक्ताओं की न सुने तो वो मरे हुओं में से जो वहां जाएगा उसकी कैसे सुनेंगे। जब अमीर आदमी ने अपने भाइयों के लिए अतिरिक्त सबूतों की मांग की तो उन्हें स्पष्ट रूप से कहा गया कि ये सबूत दिया जाना चाहिए, उन्हें राजी नहीं किया जाएगा। उनके अनुरोध ने ईश्वर पर एक प्रतिबिंब डाला। ये ऐसा था जैसे अमीर आदमी ने कहा था, अगर तुमने मुझे पूरी तरह से चेतावनी दी थी तो मुझे अब यहां नहीं होना चाहिए। इस अनुरोध के उत्तर में अब्राहम ने कहा कि आपके भाइयों को पर्याप्त चेतावनी दी गई है, प्रकाश उन्हें दिया गया है लेकिन वे नहीं देखेंगे, सत्य उन्हें प्रस्तुत किया गया है लेकिन उन्होंने सुना नहीं है। यदि वे मूसा और भविष्यवक्ताओं को नहीं सुनते हैं तो वे मरे हुए लोगों में से एक गवाह से सहमत हो जाएंगे। लेकिन यहूदी राष्ट्र के इतिहास में ये शब्द सही साबित हुए हैं। यीशु का अंतिम और मुकुट चमत्कार बेथनी में लाजर का जलाया जाना था, उसके बाद वही नहीं था, 4 दिन हो चुके थे। यहूदियों के उद्धारकर्ता की दिव्यता का ये अद्भुत सबूत दिया गया लेकिन उन्होंने इसे अस्वीकार फिर दिया। लाजर मृतकों से जी उठे और उन्होंने सबके सामने अपनी गवाही दी, लेकिन उन्होंने सभी सबूतों के खिलाफ अपने दिल को कठोर कर दिया और यहां तक कि उसे टोने की मांग की। यूहन्ना 12:9-11। कानून और भविष्यवक्ता पुरुषों के उद्धार के लिए ईश्वर की नियुक्ति एजेंसियां हैं, यीशु ने कहा, उन्हें सबूतों पर ध्यान देना चाहिए। यदि वे अपने वचन से ईश्वर की आवाज नहीं सुनते हैं तो मृतकों में से गवाह की गवाही को ध्यान में नहीं रखा जाएगा। जिन लोगों ने मूसा और नबियों को ध्यान में रखा उन्हें ईश्वर से अधिक प्रकाश की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन अगर पुरुष प्रकाश को अस्वीकार करते हैं और उन्हें दिए गए अवसरों की सराहना करने में विफल रहते हैं तो वे ये नहीं सुनेंगे कि क्या मृतकों में से उन्हें एक संदेश के साथ आना चाहिए। वे इस साक्ष्य से आश्वस्त नहीं होंगे उन लोगों के जो कानून और नबियों को अस्वीकार करते हैं, उनके दिलों को इतना कठोर कर देते हैं कि वे सभी प्रकाश को अस्वीकार कर देंगे। अब्राहम और एक बार अमीर आदमी के बीच की बातचीत आलंकारिक है। इससे मिलने वाला सबक यह है कि प्रत्येक व्यक्ति के उसके लिए आवश्यक कर्तव्यों के निर्वाहन के लिए व्याप्त रोशनी दी जाती है। मनुष्य के उत्तरदायित्व उसके अवसरों और विशेषाधिकारों के अनुपात में है। ईश्वर हरेक को पर्याप्त प्रकाश और अनुग्रह देने के लिए वो कार्य करता है जो उसने उसे करने के लिए दिया है। यदि मनुष्य ऐसा करने में विफल रहता है जो थोड़ा प्रकाश अपने कर्तव्य को दर्शाता है तो अधिक से अधिक प्रकाश केवल विश्वासघात को प्रकट करेगा, दिए गए आशीर्वाद को बेहतर बनाने के लिए उपेक्षा करेगा। वो जो उसमें विश्वास योग्य है, जो कम से कम वफादार भी है, और वो कम से कम अन्यायी, वो बहुत में भी अन्यायी है। लूका 16:10। जो लोग मूसा और नबियों द्वारा दी गई इच्छा को मान लेते हैं तो वे आश्वस्त नहीं हो गए। अमीर आदमी और लाजर के दृष्टांत से पता चलता है कि इन लोगों द्वारा प्रतिनिधित्व की गई दो जाति कैसे अनदेखी दुनिया में अनुमानित है। धनवान होने में कोई पाप नहीं है यदि धन अन्याय से अर्जित न हो। एक अमीर आदमी के पास धन होने के लिए निंदा नहीं की जाती है, लेकिन निंदा उस पर टिकी हुई है। यदि उसे सौंपा गया धन ईश्वर के सिंहासन के पास रख सकता है, इसका उपयोग वो अच्छा करने के लिए कर सकता है। मृत्यु किसी भी आदमी को गरीब नहीं बना सकती है। जो इस प्रकार खुद को अनंत धन की तलाश में समर्पित करता है, लेकिन जो आदमी अपना खजाना स्वयं के पास रखता है उसे स्वर्ग में कोई नहीं ले सकता। उन्होंने खुद को बेवफा साबित किया है। अपने जीवन काल के दौरान उनके पास अपनी अच्छी चीजें थीं, लेकिन वे ईश्वर के प्रति अपने दायित्व को भूल गए थे। वो स्वर्गीय खजाने को हासिल करने में विफल रहे। जिस अमीर व्यक्ति के पास इतने विशेषाधिकार थे, वो हमारे रूप में प्रतिनिधित्व करता है, जिसे अपने उपहारों की खेती करनी चाहिए थी ताकि उसके कार्य महान हों, उनके साथ आध्यात्मिक लाभ में सुधार हो। ये पाप से छुटकारा पाने का उद्देश्य है, न केवल पाप को हवा देना, बल्कि मनुष्य को उन आध्यात्मिक उपहारों को वापस देने हैं जो पाप की बोनी शक्ति के कारण खो गए हैं। धन अगले जीवन में नहीं ले जाया जा सकता है, ये वहां की नहीं है, लेकिन मसीह को जीतने वाले आत्माओं में किए गए अच्छे कामों को स्वर्गीय अदालतों में ले जाया जा जाता है। लेकिन जो लोग स्वार्थी रूप से ईश्वर के उपहारों को खर्च करते हैं, वे बिना किसी सहायता के अपने जरूरतमंद साथी जीवों को छोड़ देते हैं और दुनिया में ईश्वर के काम के आगे बढ़ाने के लिए आनंदित होते हैं और उनके निर्माता को बदनाम करते हैं। स्वर्ग की किताबों में उनके नाम के विपरीत रोबरी ऑफ गॉड लिखा गया है। धनी व्यक्ति के पास वो सब धन था जो वो खरीद सकता था, लेकिन उसके पास वो धन नहीं था जो उसके खाते को ईश्वर के साथ सही रखता। वो इस तरह रहता था जैसे कि उसके पास जो कुछ था। उन्होंने पीड़ित गरीबों के दावों की, ईश्वर की पुकार की उपेक्षा थी। एक पुकार आती है जिसे वो उपेक्षित नहीं कर सकता है या उसका विरोध नहीं कर सकता है, जिसके उसे उस परिसर के छोड़ने की आज्ञा दी गई है जिससे वो अब वंचित नहीं है। एक अमीर आदमी आशाहीन गरीबी की ओर बढ़ जाता है। मसीह की धार्मिकता की बागडोर स्वर्ग के घर में बुनी उसे कभी ढक नहीं सकती। वो जो एक बार सबसे अमीर बैंगनी, सबसे अच्छा लिनन पहनता था, वो नग्नता के लिए कम हो गया है। उसकी परिवीक्षा समाप्त हो गई है। वो दुनिया में कुछ भी नहीं लाया और वो इसमें से कुछ भी नहीं ले सकता है। मसीह ने पर्दा उठाकर और पुजारियों और शासकों, शास्त्रियों और फरीसियों के सामने ये चित्र प्रस्तुत किया। इसे देखो, तुम जो संसार के माल के धनी हो और ईश्वर के प्रति धनी नहीं हो, क्या आप इस दृश्य पर चिंतन नहीं करेंगे? जो पुरुषों के बीच बहुत सम्मानित है, वो ईश्वर की दृष्टि में घृणित है। मसीह का कहना है, ये एक आदमी को क्या लाभ होगा अगर वो पूरी दुनिया को हासिल करेगा और अपनी आत्मा के बदले में क्या देगा? मत्ती 8 आयत 36-37। यहूदी राष्ट्र के लिए आवेदन।
जब मसीह ने अमीर आदमी और लाजार का दृष्टांत प्रस्तुत किया, तो यहूदी देश में कई लोग अमीर आदमी की दयनीय स्थिति में थे। स्वार्थी संतुष्टि के लिए, ईश्वर के सामान का उपयोग करते हुए खुद को सजा सुनने के लिए तैयार कर रहे थे। तूकोस और आध्यात्मिक आशीर्वाद का पक्षधर था, लेकिन उसने इन आशीषों के इस्तेमाल में परमेश्वर का साथ देने से इनकार कर दिया। इस प्रकार ये यहूदी राष्ट्र के साथ था। यहोवा ने यहूदियों को पवित्र सत्य का निक्षेपागार बनाया। उसने उन्हें अपनी कृपा के वजीर नियुक्त किया था। उन्होंने उन्हें हर आध्यात्मिक और लौकिक लाभ दिया था और उन्होंने उन्हें आशीर्वाद प्रदान करने का एहसान किया। विशेष निर्देश उन्हें उनके उपचार के संबंध में दिए गए थे, जो उनके द्वार के भीतर अजनबी लोगों के क्षम में और गरीबों के बीच में थे। वे अपने लाभ के लिए सब कुछ हासिली करने की तलाश में नहीं थे, बल्कि जरूरतमंद लोगों को याद करने और उनके साथ साझा देने के लिए थे, और ईश्वर ने उन्हें अपने प्यार और दया के कर्मों के अनुसार आशीर्वाद देने का वायदा किया। लेकिन अमीर आदमी की तरह उन्होंने मानवता की अस्थायी या आध्यात्मिक जरूरतों को पूरा करने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। गर्व से भरे वे खुद को ईश्वर के चुने हुए और इष्ट लोगों के रूप में मानते थे, फिर भी उन्होंने परमेश्वर की सेवा या पूजा नहीं की। उन्होंने इस बात पर अपनी निर्भरता रखी कि वे अब्राहम के बच्चे थे। हम अब्राहम के बीज है, उन्होंने गर्व से कहा, यूहन्ना 8 आयत 35। जब संकट आया तो यह पता चला कि उन्होंने खुद को ईश्वर से अलग कर लिया। इब्राहिम पर अपना भरोसा रखा है, जैसे कि वह ईश्वर है। मसीह ने लोगों के अंधेरे दिमाग में प्रकाश को देने की कोशिश की। उसने उनसे कहा, यदि तुम इब्राहिम की संतान होते तो इब्राहिम के समान काम करते, परंतु अब तुम ऐसे मनुष्य को मार डालना चाहते हो जिसने तुम्हें वह सत्य वचन बताया जो परमेश्वर से सुना। यह तो इब्राहिम ने नहीं किया था। यूहन्ना 8 आयत 39-40। मसीह ने वंश में कोई गुण नहीं पहचाना,
उन्हें सिखाया कि अध्यात्मिक संबंध सभी प्राकृतिक संबंधों को प्रभावित करता है। यहूदियों ने अब्राहम के कार्यों को करने में असफल होने पर उन्होंने साबित कर दिया कि वे उनमें कोई सच्चाई नहीं है। केवल वे ही जो ईश्वर की आवाज का पालन करके इब्राहिम के साथ आध्यात्मिक रूप से स्वयं को सिद्ध करते हैं, सच्चाई के रूप में प्रतिध्वनित होते हैं। हालांकि वह भिखारी वर्ग का है, पर पुरुषों ने उसे हीन समझ लिया था। मसीह ने उसे एक के रूप में पहचाना जिसे इब्राहिम बहुत करीबी दोस्ती में लाएगा। अमीर आदमी, हालांकि सभी तरह की जीवन शैली से घिरा हुआ था, वह इतना अज्ञानी था कि उसने अब्राहम को ईश्वर पर छोड़ दिया। यदि उसने अपने श्रेष्ठाधिकारी की सराहना की होती और ईश्वर की आत्मा को दिमाग और दिल को बदलने की अनुमति दी होती, तो उसके पास एक अलग स्थिति होती। इसलिए राष्ट्र के साथ उन्होंने प्रतिनिधित्व किया। यदि उन्होंने ईश्वरीय आदान का जवाब दिया होता, जो उनका भविष्य पूरी तरह से अलग होता। उन्होंने सच्चा आध्यात्मिक विवेक दिखाया होगा। उनके पास साधन थे। उनके पास इसका मतलब था कि ईश्वर ने पूरी दुनिया को आशीर्वाद देने और प्रबुद्ध करने के लिए पर्याप्त बना दिया होगा। वे प्रभु की व्यवस्था से इतने अलग हो गए थे कि उनका पूरा जीवन वासना से भरा हुआ था। वे सत्य और धार्मिकता के अनुसार ईश्वर के भंडार के रूप में अपने उपहारों में हमारे लिए असफल रहे। अनंत काल उनके सम्मान में नहीं था और उनकी बेवफाई का परिणाम पूरे राष्ट्र के लिए बर्बाद हो गया। मसीह जानता था कि यरूशलेम के विनाश के समय यहूदियों को उसकी चेतावनी याद है, और ऐसा ही था। जब यरूशलेम पर विपत्ति आई, जब भूखमरी दृष्टांत को समझा, उन्होंने अपनी उपेक्षा से अपनी पीड़ा को अपने ईश्वर प्रदत्त प्रकाश को दुनिया के सामने चमकाने के लिए लिया था। आखिरी दिनों में इस धरती के इतिहास के समापन दृश्यों को अमीर आदमी के इतिहास के समापन में चित्रित किया गया है। अमीर आदमी ने अब्राहम का बेटा होने का दावा किया, लेकिन वो अब्राहम से एक अगणित खाड़ी से अलग हो गया था। एक चरित्र गलत तरीके से विकसित हुआ। विश्वास और आज्ञाकारिता में उनके वचन का पालन करते हुए अब्राहम ने ईश्वर की सेवा की, लेकिन अमीर आदमी ईश्वर से पीड़ित मानवता की जरूरतों से बेखबर था। उसके और अब्राहम के बीच तय की गई बड़ी खाड़ी अवज्ञा की खाई थी। आज कई ऐसे हैं जो उसी पाठ्यक्रम का अनुसरण कर रहे हैं। हालांकि चर्च के सदस्य वे अनियंत्रित हैं। वे चर्च की सेवा में भाग ले सकते हैं, वे भजन का जाप कर सकते हैं, जैसे हिरणों नदी के जल के लिए हांफती हैं, वैसे ही हे परमेश्वर, मैं तेरे लिए हांफता हूं। भजन संहिता 42 आयत 1। लेकिन वे एक झूठ की गवाही देते हैं। वे ईश्वर की दृष्टि में अधिक भर्मी नहीं हैं, जो सबसे बड़ा पापी है। सांसारिक सुख की उत्तेजना के बाद जो आत्मा लंबी होती है, वो मन जो प्रदर्शन के लिए प्रेम से भरा होता है, ईश्वर की सेवा नहीं कर सकता। दृष्टांत के धनी व्यक्ति की तरह इस तरह के शरीर की वासना के खिलाफ युद्ध करने का कोई झुकाव नहीं है। वो भूख को बढ़ाने के लिए तरसता है। उसने पाप का वातावरण चुना। वो अचानक मृत्यु से छीन लिया जाता है और वो शैतानी एजेंसियों के साथ अपने जीवन काल के दौरान चरित्र के साथ कब्र में चला जाता है। अनुग्रह में उसके पास कुछ भी चुनने की शक्ति नहीं है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। उस दिन के लिए जब अमन भर जाता है, उसके विचार नष्ट हो जाते हैं। भजन संहिता 146 आयत 4, सभोपदेशक 9 आयत 5-6। जब परमेश्वर की आवाज मरे हुए लोगों को जगाती है, वो उस कब्र की भूख और जुनून के साथ आएगी। वही पसंद और नापसंद जिसे वो जीवित रहते हुए पोषित करता है। ईश्वर किसी ऐसे व्यक्ति को फिर से बनाने के लिए कोई चमत्कार नहीं करता है जिसे तब दोबारा नहीं बनाया जाएगा। जब उसे हर अवसर हर सुविधा के साथ दिया जाएगा, अपने जीवन काल के दौरान उन्होंने न तो ईश्वर को प्रसन्न किया और न ही उनकी सेवा में आनंद पाया। उसका चरित्र ईश्वर के अनुरूप नहीं है और वो स्वर्गीय परिवार में खुश नहीं रह सकता। आज हमारी दुनिया में एक वर्ग ऐसा है जो आत्मधार्मिक है। वे लोलुप नहीं है, वे शराबी नहीं है, वे काफिर नहीं है, लेकिन वे खुद के लिए जीना चाहते हैं, ईश्वर के लिए नहीं। वो उनके विचारों में नहीं है,
इसलिए उन्हें अविश्वासियों के साथ वर्गीकृत किया जाता है। क्या उनके लिए परमेश्वर के शहर के द्वार में प्रवेश करना संभव था? उन्हें जीवन के पेड़ पर कोई अधिकार नहीं हो सकता था जब उनके सभी बाध्यकारी दावों के साथ उनके सामने ईश्वर की आज्ञा रखी गई थी। तो उन्होंने कहा, ना ही उन्होंने यहां ईश्वर की सेवा नहीं की है, इसलिए वे उसके बाद सेवा नहीं करेंगे। वे उसकी उपस्थिति में नहीं रह सकते थे और वे महसूस करेंगे कि कोई भी स्थान स्वर्ग के लिए बेहतर था। मसीह को सीखने का अर्थ है उनकी कृपा प्राप्त करना, जो उनका चीजों लोग धर्मी पर दिए गए बहुमूल्य अवसरों और पवित्र प्रभावों की सराहना और उपयोग नहीं करते हैं। उन्हें स्वर्ग की शुद्ध भक्ति में भाग लेने के लिए फिर नहीं किया जाता है। इनके पात्रों को ईश्वरीय अनुकरण के अनुसार नहीं ढाला जाता है। अपनी उपेक्षा से उन्होंने एक ऐसी चौकी बनाई है जो कुछ भी नहीं पा सकती। उनके और धर्म के बीच एक बड़ी खाई है।